अंग्रेजी साम्राज्य आया, मैं हर उस इलाके का नाम बता सकता हूं जहां मोमिनीन ने कयाम किया है, बस। और भी लोगों ने किया होगा, लेकिन जहां जहां मोमिनीन थे उन्होंने कयाम किया, लड़ा, लड़े हैं। नाम नहीं है, इस्तिलाह बाद में आई, जैसे मर्जियत शुरू हो गई, शेख सदूक, शेख मुफीद, शेख तूसी शुरू हो गई, इस्तिलाह नहीं आई, इस्तिलाह बाद में आई ना। बिल्कुल ऐसे विलायत फकीह कोई नई चीज नहीं, नई चीज नहीं। आपके इस खित्ते में, इस सरजमीन पर फकीह की हुकूमत कायम हो चुकी। नवाब अमजद अली शाह, उसने अपने आप को दूसरे नंबर पर रखा था, सुल्तानुल उलमा को पहले नंबर पर रखा था, ऐलान किया था कि असल हाकिम ये है, मैं इसका नाइब हूं। अवध का हुक्मरान नाइब था और गुफरान माफ का बेटा सुल्तानुल उलमा वली फकीह था। लोगों के लिए नई इस्तिलाह हो गई है, यहां के भी लोगों के लिए वली फकीह। मैं बता रहा हूं कि क्या मतलब फकीह की हुकूमत। फिर उसके बाद सैयद इब्राहिम गुफराम आपके परपोते, उनके एक बेटे तो सैयद मोहम्मद सुल्तानुल उलमा थे, पांच बेटों में से एक बेटे सैयद हुसैन, सैयद हुसैन के बेटे सैयद हादी, सैयद हादी ने मुमताजुल उलमा सैयद मोहम्मद नकी या मोहम्मद तकी, उनके बेटे सैयद इब्राहिम अपने जमाने के मर्ज है। कब? जब ये गदर हो गया। गदर के बाद इन मलूनों ने क्या किया अंग्रेजों ने, आसफी इमामबाड़े को अपनी छावनी बना दिया। दुनिया का सबसे बड़ा इमामबाड़ा उस वक्त था, आज मुमकिन बन गया, मुझे नहीं मालूम, मैं खामा खा के दावे नहीं कर रहा, लेकिन हाँ ये जानता हूं कि अब से चंद साल पहले तक दुनिया का सबसे बड़ा आजा खाना कौन सा है, आसफुद्दौला के नाम से, जो आसफी इमामबाड़ा लखनऊ का कहलाता है। अब और भी बड़े बड़े बन गए होंगे, जाहिर जमाना आगे बढ़ रहा है, उस जमाने की बात कर रहा हूं। सबसे बड़ा आजा आसफी इमाम, और आसफी इमामबाड़े से बाहर निकले रूमी गेट, जो उसका यानी रूमी तर्ज में बना हुआ था, सामने टीले वाली मस्जिद कहलाती है। नाम तो उसका शायद कुछ और है, शाह मोहम्मद या मोहम्मद शाह की मस्जिद, अहले सुन्नत की मस्जिद, वो मस्जिद थी। उन दोनों पे इनका कब्जा हुआ अंग्रेजों ने, छावनी बना दी, और कत्ले आम इतना बड़ा हुआ था। बेगम हजरत महल की जो आखिरी लड़ाई है, वाजिद अली शाह, वाजिद अली शाह को गालियां देते हो, उसको रंगीला बना के रख दिया, वही था जिसने सबसे बड़ी लड़ाई लड़ी थी, उसकी बीवी ने, उसको गिरफ्तार किया गया था, क्योंकि जो जो लड़ा था उनको तमाशा बनाया था अंग्रेजों ने। समझ में आ रही है मेरी बात? जो जो अंग्रेजों से लड़ा उनका तमाशा बनाया गया, उनका मजाक बनाया गया, इसीलिए वाजिद अली शाह को गिरफ्तार करके पहले कलकत्ता और फिर आगरा पे कहां कहां फिराया गया, मार दिया। उसकी बीवी ने, मलका हजरत महल ने जंग की है, और ऐसी भयानक जंग की है, वो आखिरी जंग का मंजर मैं भी देख के आया हूं, जिसको रेजिडेंसी कहा जाता है, लखनऊ में मौजूद है, जिसके एक एक इंच में गोलियों और गोलों के निशान है। इतनी बड़ी लड़ाई, कई खानों तक लड़ाई, आखिरी मकाम तक मैं गया, वो अभी महफूज किया हुआ है, वहां की हुकूमत ने महफूज किया हुआ, अगरचे उस तरह से उसको अहमियत नहीं देते, क्योंकि जाहिर के मुसलमानों का मामला है, और फिर मुसलमानों से बढ़ के शियों का मामला। हम तो मुश्किल ये कि दो तरफ से है ना, दो तरफ से होगा ना, एक तो मुसलमान, ऊपर से शिया, ये बड़ी मुश्किल हो जाती है। और ये जो दरिंदे की हुकूमत बैठी है, इसको तो आप जानते हैं, इसके लिए शिया सुन्नी को भी है ही नहीं। जब छावनी बनाई, उलमा गिरफ्तार, मुजाहिदीन को पकड़ पकड़ के तोपों से बांध के उड़ा दिया गया, बेगम हजरत महल कुछ नहीं मालूम कि अंग्रेजों ने मारा है, कहां गायब, क्योंकि नीचे भूल भलैया थी, कहते कि वहां से फरार हो गए, लेकिन ज्यादा इम्कान ये कि अंग्रेजों ने मार के खबर मशहूर कर दी कि वो निकल गई कहीं। लेकिन लड़ाई इतनी बड़ी जिसमें हिंदू मुस्लिम सुन्नी शिया सब शरीक थे अंग्रेजों के खिलाफ, लेकिन गद्दारियां गद्दारियां गद्दारियां, गद्दारियों ने मुसीबत डाल दी हमारी तारीख में, उन गद्दारियों की वजह से। वो सबसे बड़ी लड़ाई अवध में लड़ी गई है, वो जो बांकों का मजाक बना गया आज तक है ना, लखनऊ के बांके, आपको पता है बांके कौन थे, पढ़ लीजिए मुस्तशरकीन की किताबों में, कि वो बांके वो थे जो अपनी जान से गुजर जाते थे, अपनी मुसल्ला फिरते थे बाजारों में, और अपनी गर्दन अपने हाथ से काट लेते थे। लिहाजा जो जो अंग्रेजों से लड़ा उनका तमाशा बनाया, वाजिद अली शाह का तमाशा बनाया, बांकों का तमाशा बनाया। ये बांके सिपाही होते थे, ये बाके वो थे जो अंग्रेजों से लड़े, आखिरी सांस तक लड़े, इनके टुकड़े हो गए तलवारों से तोपों से, लिहाजा वो लड़े थे, लिहाजा उनका तमाशा बनाया उन लोगों ने। तारीख पढ़ा करो तुम्हें अंदाजा होगा कि अंग्रेजों ने क्या क्या किया। जो कौम भी उनसे लड़ी, इशारा कर रहा हूं, बर्रे सगीर में जो कौम उनसे लड़ी, उन्हें पागल बनाया, उन्हें बेवकूफ बनाया, उन्हें अहमक मशहूर किया, और देख लो तारीख में कि कौन कौन उनसे लड़ा था। अवध लड़ा है, पंजाब का एक हिस्सा लड़ा, पूरा पंजाब नहीं, जो लड़े थे उनका तमाशा बनाया। सरहद के लड़े लोग कुछ, सारे नहीं, आधे उनके एजेंट भी थे, जो लड़े उनका मजाक बनाया गया। ये इशारे कर रहा हूं तारीखी। जब लड़ाई खत्म हुई, सहमे हुए लोग, सहमे हुए, 5 लाख आदमी मारा है अवध में अंग्रेजों ने, 5 लाख। इतने उस जमाने के, जरा 5 लाख का हिसाब तो करो, उस जमाने में कितने होंगे, यानी फैजाबाद और कानपुर से लेके लखनऊ और ये जो तो इतने मलिहाबाद ये पूरा इलाका बनता है, रदौली और भी बहुत सारे नाम है। ये अवध की सल्तनत काफी बड़ी थी, छोटी सी नहीं थी। इस पूरी सल्तनत में 5 लाख इंसानों का कत्लेआम उस जमाने में सहम गए थे लोग, कोई निकल नहीं सकता था। ऐसे में मर्द जरी आया बाहर, कौन? कोई और नहीं, हमारा आलिम आयतुल्ला सैयद इब्राहिम पर पोते हजरत उस्मान भाप के। इन्हीं ने पहले पैगाम भेजा कि ये हमारी मस्जिद है। अच्छा, जुमा मस्जिद अलग थी, पहले जुमा मस्जिद अलग थी, आसफी इमाम बड़ा अलग था, जुमा मस्जिद उनका कब्जा नहीं था। लेकिन सैयद इब्राहिम ने कहा हम यहां जुमा पढ़ाएंगे, क्योंकि आजाद करानी थी अपनी मस्जिद, हमारी इबादत गाह है, इबादत गाह को खाली किया जाए। अंग्रेज का सुनने वाले वो ताकत और फतह के नशे में चूर, कब बैठे रहो घर में, उन्हें छावनी बना के घोड़ों का अस्तबल बना दिया। आसफी इमाम बड़े को भी, टीले वाली मस्जिद को भी, आमने सामने दो मस्जिदें थी। सैयद इब्राहिम निकले हैं घर से, ऐलान करके निकले कि मैं मस्जिद लेने जा रहा हूं अंग्रेजों से। क्यों? दो मकसद थे इसके, सिर्फ मस्जिद वापस लेना मकसद नहीं था, मकसद यह था कि डरे सहमे लोगों का खौफ दिलों से निकाला जाए। जो जो डरे हुए लोग हैं, जो सहमे हुए लोग हैं, इनके खौफ को निकाल के फेंक दिया जाए। तो यह गुफरान माप का खून था, उस मुश्तहिद का खून था जिसने दरबार में बैठना गवारा नहीं कहता। आसिफ-उद-दौला के, आसिफ-उद-दौला उठ के उनकी मस्जिद में आता था, वो कभी भी नहीं जाते थे। ये मिसाल कायम कर गई। तो सैयद इब्राहिम उन्हीं का परपोता आयतुल्ला सैयद इब्राहिम, ये निकले, इन्होंने ऐलान किया कि ये मस्जिद हमें चाहिए, और सिर्फ ये नहीं वो मस्जिद भी। अंग्रेजों ने कहा भाई आपकी मस्जिद ले जाओ, वो मस्जिद से क्या ताल्लुक है? नहीं, ये मुसलमानों की मस्जिद है, ये दोनों हमारी मस्जिदें। तो आज तक तारीखों में सैयद इब्राहिम का एहसान लिखा है, जानते टीने वाली मस्जिद के बुजुर्ग भी जानते, उनकी किताबों में भी लिखा है कि आयतुल्ला सैयद इब्राहिम था जिसने अंग्रेजों को धमकी देकर दोनों मजाहिब की मस्जिदें वापस ली थी। क्यों? अंग्रेज जानते थे कि इसके पीछे फिर पूरी कौम निकल आएगी, और कौम तैयार थी निकलने को, और निकले या ना निकले, सैयद इब्राहिम ने ऐलान कर दिया था ये हमारी मस्जिद है, मैं वापस। क्यों? बता दिया था कि बेशक तुम्हारी हुकूमत आ गई, मगर हम तुम्हारे जेरे असर नहीं है, हम तुम्हारी बयत करने वाले लोग नहीं है। तो उस जमाने में यही हो सकता था, कोई हुकूमत तो नहीं कायम हो सकती थी जो कहते हैं उन मौलवियों ने किया क्या, तुझे पता क्या है कि क्या किया उन्होंने? इसीलिए खानदान इश्तिहाद कहलाया कि पहला मुजतहिद इसी खानदान का था, और भी हुए बाद में माशाल्लाह बड़े बड़े खानदान मशहूर हुए, लेकिन खानदान इश्तिहाद क्यों कहलाया? हजरत गुफरान माँ अलैहि रहमा सैयद दिलदार ने वो पहला मरजे तकलीद इस सरजमीन का, और उसकी औलाद में जिसने नजफ। आप यह एक और हवाला देता चला जाऊं कि यह भी तारीख में है, तारीखों में है कि सैयद दिलदार अली नकवी गुफरान माब जब नजफ गए हैं पढ़ने के लिए, यहां से पढ़ के फारिग होके गए थे, मुश्तहिद होके गए थे, याद रखिएगा। लेकिन नजफ जाना बहरहाल एक सादत थी, जब नजफ गए तो कुब्बे में, मौला के कुब्बे में दुआ मांगी थी, मौला आरिफान के कुब्बे में, कुब्बे के नीचे रोजे में, कुब्बे के नीचे खड़े होकर दुआ मांगी थी, और ये दुआ आज तक उसका असर जारी है। उनकी 10वीं 11वीं पुश्त चल रही है, क्योंकि जाहिर है कोई 10वीं पुश्त में कोई 11वीं आप जाते हैं, नवासे पोते दादे आगे चला जाता है, कोई 12वीं भी मैं ख्याल अब तो हो गई होगी। ये दुआ मांगी थी कि मेरी नस्ल से इल्म का, दीन का इल्म खत्म ना हो, मेरी नस्ल से इल्म दीन का भी खत्म ना हो। और यकीन मानिए कि इस वक्त भी नजफ, करबला, कौम, मशहद, पाकिस्तान, हिंदुस्तान, अब भी इस वक्त उनकी नस्ल के कोई 80 से 100 के करीब उलमा मौजूद है, 80 से फुकहा मौजूद है। समझ में आई बात? इसलिए जिक्र कर रहा हूं, आप भी इस एजाज के हामिल हो, आपकी सरजमीन पे भी बहुत बड़े बड़े मुज्तहिदीन और मर्जे गुजरे, बशर्ते कि कोई बताने वाला होता।